आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ।
क्या पाक फौज मुज़ाकरात की ड्राइविंग सीट पर है, और अगर नहीं है तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के क्या इम्कानात हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूँ पारस खुर्शीद। आज पानी का आलमी दिन है, पानी जिंदगी है, ये बात थर और चौलिस्तान के लोगों से ज्यादा कौन जानता है, क्योंकि सही मायनों में ये प्यासे लोग ही पानी की अहमियत को जानते और समझते हैं। शायद पानी की इसी अहमियत के पेश नजर उर्दू जबान में पानी से मुतालिक कई मुहावरे भी हैं, जैसे चुल्लू भर पानी, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अब पता नहीं क्यों जब भी चुल्लू भर पानी की बात होती है मुझे हुकूमती कारकर्दगियां, बिलखसूस सिंध हुकूमत की थर के लोगों पर मेहरबानियां और महंगाई के बोझ तले कुचले हुए और दहशतगर्दों के हाथों कीड़े मकोड़े की तरह मरते हुए अवाम याद आ जाते हैं। पानी जिंदगी है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इक्तदार अपना रास्ता खुद बनाता है। और कहा जाता है कि इक्तदार अपना रास्ता कैसे बनाता है, ये बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। कुछ दिन इक्तदार से बाहर रहो, फिर इक्तदार अपना रास्ता खुद बना लेता है और जाकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दर पर दस्तक दे देता है। शायद इसमें भी कोई कौमी मफाद होगा जिसको तलाश करना होगा। अब जहां तक तलाश करने की बात है तो जनाब, तलाश तो हुकूमती और तालिबानी मुजाकरात में ये भी करना है कि दोनों फरीकों में से बड़ा फरीक कौन सा है। और अगर ये भी नहीं मालूम कि रियासत बड़ी है या तालिबान, तो मुजाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? और चूंकि अब तो मुजाकरात के मुस्तकबिल से अमन का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सवाल भी जहनों में गर्दिश कर रहा है कि हुकूमत मुजाकरात से क्या हासिल करना चाह रही है, वक्ती अमन या सोच की तब्दीली के साथ एक मुस्तकिल और पायदार अमन। और सबसे अहम बात यह जानना कि अमन के हुसूल के लिए किए जाने वाले इस मुजाकराती अमल में पाक फौज कहाँ खड़ी है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मजहबी रहनुमा हैं, मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मजहबी रहनुमा हैं, पाकिस्तान उलमा काउंसिल से ताल्लुक है। PMLN से हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अफजल साहब ने, और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं यासिर पीरजादा साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा राना अफजल साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आज मुजाकरात के हवाले से मजीद पेशरफ हुई है और जो तालिबानी कमेटी के रुकन हैं मौलाना यूसुफ शाह साहब, उन्होंने कहा कि आज के इजलास में बड़ी कामयाबी हुई है। मौलाना समीउल हक साहब ने कहा कि अब मुजाकरात जो हैं वो हसास मरहले में दाखिल हो गए, यानी दोनों जानिब से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि इन मुजाकरात में पाक फौज किस जगह खड़ी है?
ठीक, बिल्कुल ठीक
जी राना साहब, इसका जवाब
देखें, पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के साथ बिल्कुल एक ही पेज पे है। हमारी आर्मी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, और उनके पास जो इंफॉर्मेशन है और जो उनके तहफ़ुज़ात हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हैं, और उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हुकूमत के लिए बड़ी अहम है, और इसलिए हुकूमत उनको साथ लेके चलती है। और जो भी पेशरफ्त हो रही है हर मरहले के ऊपर पाकिस्तान आर्मी जो है वो शरीक है और वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी अब तक की कामयाबी है, एक डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट था, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं था। पहले मरहले के अंदर जो पहली कमेटी थी उसने वो एक ट्रस्ट की फजा पैदा की कि दोनों।
मैं इस वक्त आपसे सिर्फ फौज के हवाले से सवाल कर रही हूँ, क्या फौज इस वक्त इन मुजाकरात के हवाले से ड्राइविंग सीट पर है जो आप बता रहे हैं? क्या वही हालात हैं? क्योंकि आपके अपने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि मुजाकरात के करीब लाया जाए फौज को, फिर तालिबानी कमेटी की भी यह ख्वाहिश थी ना कि आप मुजाकरात में एक नुमाइंदा फौज का भी शामिल होना चाहिए, फिर फौज ने जो फैसला किया वो भी आपके सामने।
देखें, हर जमात का अपना एक नजरिया है और मौलाना फजल रहमान साहब का अपना है। फौज ड्राइविंग सीट में हो नहीं सकती, फौज एक हुकूमत का इदारा है और हुकूमत ने फौरी इंफॉर्मेशन लेनी है और दूसरे इदारों को भी साथ लेके चलना है। तो ड्राइविंग सीट में हमेशा हुकूमत पाकिस्तान होगी, और फौज जो है वो उसको साथ हम लेके चलेंगे।
लेकिन राणा साहब, ये जो मुतालबा है ना, वो आपकी जो हुकूमती कमेटी के एक रुकन है ना मेजर आमिर, उन्होंने कहा कि फौज को ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए, और क्या हुकूमत ये समझती है कि उनको शामिल किए बगैर आप इस मुजाकराती प्रोसेस को कामयाबी से हमकिनार कर देंगे?
देखिए, मैं ये समझता हूं कि हो सकता है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं कि तालिबान की जो कमेटी है वो उनका कंफर्ट लेवल जो है वो फौज को शामिल करने से हो, लेकिन ये तो फैसला पाकिस्तान की हुकूमत ने करना है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो डायरेक्ट उनके साथ डायलॉग में आना चाहती है या नहीं आना चाहती। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो तो फौज की बिल करती है, और हुकूमत की इज्तमाही सोच पाकिस्तान की इज्तमाही सोच की नुमाइंदगी करती है। इसलिए एक जो ऑर्गन है हुकूमत का, जो पाकिस्तान फौज है, वो उसको बोर्ड पे लेना मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा मरहला आएगा जहां पे कोई उनकी जरूरत होगी, तो मेरा ख्याल है उनके नुमाइंदे के आ जाने की कोई वो ऐसी बात नहीं।
आपकी इसी बात पे यासिर पीरजादा साहब, क्या आप इत्तफाक करेंगे? आप नहीं समझते कि फौज को इस अमल में शामिल होना चाहिए? और आपके ख्याल में ये जो मुजाकरात में प्रोग्रेस हो रही है, ये इसमें फौज का कितना इनपुट है? क्योंकि राणा साहब कह रहे हैं फौज ड्राइविंग सीट पर हो, ये जरूरी नहीं।
आपके सवाल के दो हिस्से हैं, एक दूसरा हिस्सा उसका यह है कि मुजाकरात में प्रोग्रेस हो रही है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं आपके सवाल का पहले हिस्से का जवाब दे दूं कि ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए या नहीं। मेरा ख्याल है ड्राइविंग सीट पर तो नहीं, लेकिन वो साथ वाली सीट पर ज़रूर बैठे हैं, और वो इस तरह से बैठे हैं कि वो बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में कानून के दायरे में रहकर असिस्ट कर रहे हैं कि मियाँ साहब ध्यान से ज़रा आगे खाइए, ज़रा राइट टर्न कर लीजिएगा, बच बचा के आगे उतराई आएगी, ज़रा ध्यान से स्पीड आहिस्ता कर लें, और मियाँ साहब ड्राइविंग बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है दिस इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि एज पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अभी यहाँ पे उन्होंने कहा कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और लॉ में वो इसी तरह वफाकी हुकूमत के ताबे हैं जैसे बाकी के इदारे हैं, वरना तो जिस तरह से कैदियों की बात होती है यहाँ बार बार, ऑल्दो के उस पर भी मेरी कुछ रिजर्वेशन है।
आपको ऐसा नजर आ रहा है
जेल खाना जान को जी,
आपको ऐसा सब कुछ नजर आ रहा है जैसा कि कहा जा रहा है फौज के हवाले से? क्योंकि देखें, बाज हलकों में ये कहा जा रहा है कि अगर फौज की शमूलियत के बगैर अगर वो ड्राइविंग सीट पर नहीं होती तो जो मुजाकराती अमल है वो कामयाब नहीं हो सकता।
नहीं देखें, अगर वो ड्राइविंग सीट पर हो तो फिर हम ये इतराज करेंगे कि वो ड्राइविंग सीट पर किस कैपेसिटी में है, हुकूमत तो सियासी है, इतना भारी मैंडेट लेकर आई है, अवाम ने इलेक्ट किया है, तो लिहाजा हमारे एतराजात की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मेरा ख्याल है जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और खुद फौज की तरफ से भी ये बयान बारहा आ चुका है कि वो कानून के दायरे में रहकर वफाकी हुकूमत की मुआवनत कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने कहा ना मुजाकरात प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है, अल्लाह करे ये ऐसा ही हो, आप दुरुस्त फरमा रही हैं।
यासिर पीरजादा साहब, मैंने ये बात नहीं की, आज मौलाना यूसुफ शाह साहब ने ये बात की है कि मुजाकरात जो है वो कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं, इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है, चौधरी निसार साहब ने ये बात की है, मैं उनके हवाले से पूछ रही थी आपसे।
नहीं देखें, सबसे अहम पेशरफ्त या सब जो कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत कोई होती है ना दहशतगर्दों के साथ मुजाकरात में, वो ये होती है कि सबसे पहले वायलेंस तशद्दुद जो है वो बंद हो जाए।
ठीक,
तो जब से ये सो कॉल्ड एक महीने की जंगबंदी का ऐलान है, तो मुझे आप ये बताएं कि इस एक महीने के दौरान ही कितने खुदकुश हमले और कितने धमाके हुए हैं और कितनी अमवात हुई हैं, इसी की आप मुझे कैलकुलेशन बता दें, तो ये तो सीज फायर तक नहीं हुआ अभी तक, तो कौन सी पेशरफ्त और कौन सी कामयाबी, मैं तो नहीं इस तरह की समझ रहा। अलबत्ता ये जो पहली कमेटी थी वो क्यों तहलील कर दी गई, मेरी समझ से तो ये भी वैसे बाहर है।
ये भी राणा साहब से जरा पूछ लेते हैं, शायद ये हमें समझा सके।
पावरफुल कमेटी है और उसको तमाम मैंडेट हासिल है, लेकिन अगर उसको तमाम मैंडेट हासिल था तो फिर वो क्यों खत्म हो गई? तो ये
यासिर पीरजादा साहब, अब ये देख लेंगे ना कि अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कितने ताकतवर हैं, वो कितने पावरफुल हैं, अब जरा ये भी देख लेंगे। अलामा ताहिर अशरफी साहब, अब इस वक्त जो तालिबान की शरायत हैं, जिनका अभी राणा साहब ने भी जिक्र थोड़ा सा वो उन्होंने बीच में किया कि वो कैदियों के हवाले से और फ्री पीस जोन के हवाले से, तो ये तो सारी फौज से फौज इसमें शामिल है ना, और कहा यह जा रहा है कि फौज मुजाकराती अमल में शामिल नहीं है, जो उनकी शरायत हैं वो लिंक्ड हैं फौज से, तो आप हुकूमत को भी जानते हैं और आप तालिबान को भी जानते हैं, तो इस सूरत हाल में कामयाबी के कितने इम्कान आपको लग रहे हैं उन मुजाकरात के जो दो तीन दिन बाद शुरू होने वाले?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये तसव्वुर अगर किसी का है तो बिल्कुल गलत है कि हुकूमत कहीं और है और फौज कहीं और है। फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। ये मुजाकरात शुरू ही नहीं हो सकते थे अगर फौज हुकूमत के साथ एक पेज पर ना होती, और जब एपीसी हुई اس وقت بھی فوج نے کہا کہ ہم مذاکرات کو فسیلیٹیٹ کریں گے.
ٹھیک,
ابھی جتنا سارا عمل ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دوست اگر فوج مداخلت کرے تو کہتے ہیں دیکھو مینڈیٹ کدھر گیا, اور اگر نہ مداخلت کرے تو تب کہتے ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس کنٹری کے. جب وہ اپنی سربراہی میں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں
جی,
تو فوج بھی ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, آئی ایس آئی بھی آن بورڈ ہے, باقی بھی آن بورڈ ہیں. یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں.
ٹھیک,
جہاں تک مذاکرات کی کامیابی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بات پہلے دن واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان کے اندر یہ جو 30 سال سے یہاں پر سلسلہ کار آیا ہے
جی,
وہ سارے کے سارے کوئی طالبان کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں. ان میں القاعدہ ہے, آرے ازبک ہیں, تاجک ہیں, ہمارے پڑوس ہمارے دوست کرزئی صاحب جو پال رہے ہیں ہمارے لیے, اور جو انہوں نے وہاں پر کیمپ کھلوائے ہوئے ہیں ان کے لوگ ہیں. تو یہ ایک دن
صاحب اگر سب ان کے انڈر کنٹرول نہیں ہیں, سب ان کے اس میں کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر صرف انہی سے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟
دیکھیے مذاکرات چوئی نثار صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مختلف لوگوں سے مختلف جگہوں پہ مختلف معاملات پہ ہو رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان ایک بڑا گروہ تھا, ایک بڑی جماعت تھی, ان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں سیز فائر ہوا, پھر القاعدہ نے کہا ہم بھی کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جندلہ نے کہا ہم بھی کرتے ہیں, اور اب یہاں معاملہ آ گیا کہ اب طالبان اور حکومت آمنے سامنے بیٹھیں گے.
تو بھائی ایک مہینے ڈیڑھ میں یہ کون سے سیز فائر ہیں, کب ہوئے یہ
بھائی جان؟ یہ سیز فائر اگر نہ ہوتا,
وہ پوچھیں کب ہوا ہے,
آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے القاعدہ نے اعلان کیا اور جندلہ نے. آپ تو ماشاء اللہ پیرزادہ صاحب اخبارات
نہیں, اس دوران جو حملے ہوئے علامہ صاحب اس دوران جو حملے ہوئے پھر وہ کس نے کیے؟
دیکھیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ پشاور میں ایک دن حملہ ہوتا ہے اور کوئٹہ میں بھی ایک دن حملہ ہوتا ہے اسی چند گھنٹے میں, اور کوئٹہ میں حملہ ہوتا ہے اہل سنت والجماعت جسے آپ سپاہ صحابہ کہہ لے اس کے جلسے کے اوپر, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ حملہ کرنے والے تو نہ لشکر جنگوی کے ہوئے نہ طالبان کے ہوئے. تو یہی ہمارا سوال ہے کہ یہ کون ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل
سپاہ صحابہ پر حملہ نہیں ہوا تھا, جہاں ان کا جلسہ ہو رہا تھا اس سے کچھ دور ہوا تھا, اور اس کے باوجود انہوں نے بڑی آزادی کے ساتھ اپنا جلسہ کیا ہے. میں ذرا علامہ صاحب کو بھی شامل کر لوں, وہ آپ کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں.
ایک سیکنڈ, آپ کا کیا خیال ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں وہ اپنا جلسہ چھوڑ کے بھاگ جاتے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت ایسا نہیں کرتی. دھماکہ ہوتا تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے کہ دھماکہ ہو گیا تو ہم بھاگ چلے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے.
ٹھیک, علامہ صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, اور ساتھ ساتھ ذرا جو ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بات کی, تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں وہ صرف حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان ہو رہے ہیں, اور کسی قسم کا کوئی ایکسٹرنل پریشر اثرات نہیں ہے؟
پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے اس ملک میں نا, امن ہمارے تمام پاکستان کے عوام کی خواہش ہے,
تو اسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں.
اچھا, اب امن کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو جا رہے ہیں؟ وقتی امن چاہیے آپ کو یا دیر پا امن چاہیے؟
مستقل جی.
آپ کو کچھ دنوں کے لیے امن چاہیے یا اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو تکفیری مائنڈ سیٹ ہے
جی,
اور باقاعدہ جس اس مائنڈ سیٹ اور اس نظریے اور سوچ کے تحت یہ لشکر اور یہ دہشت گرد گروہ وجود میں آئے ہیں, آپ کی اپنی پالیسی جو افغانستان کے بارے میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اور اس کے اپنے ہمسایہ ممالک کے بارے میں ہے, جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آتیں اور ان دہشت گردوں کے ساتھ آپ کوئی بھی جب قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی کوئی گراؤنڈز ہونی چاہیے. مورل گراؤنڈز ہوتی ہیں, قانونی اور آئینی گراؤنڈز ہوتی ہیں, شرعی اور دینی گراؤنڈز ہوتی ہیں. آئین کی روشنی میں یہ باغی ہیں, دین کی روشنی میں یہ محارب اور مفسد فی الارض ہیں, بے گناہوں کے قاتل ہیں, بچوں کے قاتل ہیں. ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے, اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا اور ختم نہ کیا گیا, کچلا نہ گیا, یہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرا کوسچن ہے آپ سے, لاڑکانہ کے اندر ایک ہندو بے حرمتی کرتا ہے قرآن مجید کی, قابل مذمت کام ہے؟
الزام تھا, یہ
الزام تھا جو بھی تھا, گھر کس کے جلتے ہیں؟ تم باقی ہندوؤں کے, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے چر ان کے عبادت گھانے جلتے ہیں. گویا ایک ایسا مائنڈ سیٹ پال دیا گیا ہے, وجود میں لے آئے ہیں, جو جگہ جگہ موجود ہے اور انوائرمنٹ کے مطابق اس کے اظہار کا وجود کا اظہار بھی ہوتا ہے. ان مذاکرات کی نہ مورل گراؤنڈز ہیں, نہ آئینی اخلاقی ہیں, نہ قانونی ہیں, نہ شرعی اور دینی ہیں. بیس لیس کام ہو رہا ہے. سٹیٹ کو چاہیے تھا کہ آن ہی ہاتھوں سے نبٹتے, جو ہتھیار پھینکتا اس سے بات کرتے, نہ یہ کہ آپ ان کو سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں, ایک ایسی بدعت کی روایت ڈال رہے ہیں, ایک ایسی روایت کی بنیاد رکھ رہے ہیں. فیوچر میں جس آدمی نے بھی اپنی بات بنوانی ہے وہ مسلح جتھے تیار کرے, مسلح گروہ تیار کرے اور اس کے بعد آپ سے اپنی بات بنوائے. اب آپ ان کے مطالبات مان رہے ہیں, پھر جو جیلوں کے اندر دو دو تین دن قتل کیے ہوئے بندے بیٹھے ہیں ان کے مطالبات نہیں مانتے.
تین دن میں جو مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں جس سے خوشخبری بھی کہا جا رہا ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خوشخبری نہ وقتی ہے اور نہ ہی وہ مستقل ہے؟
بزنس کام ہے یہ, ایک بڑے وسیع انداز میں کام کرنے کا
ضرورت ہے.
جو شرعی نہیں ہے, قانونی نہیں ہے, اخلاقی نہیں ہے, دینی نہیں ہے, مفسدین فی الارض, محاربین, جو باغی ہیں ہمارے دستور اور قانون اور آئین کے, جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے, جنہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے, ہزاروں کے قاتل ہیں, آپ ان کے ساتھ بات, ان کو سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں, ان کو وقت دے رہے ہیں, منظم ہونے کا وقت دے رہے ہیں. آپ ادھر مذاکرات کر رہے ہیں, وہاں پر کیا ہوا لڑکانہ میں, کیا ہوا بلوچستان کے شہروں کے اندر, پشاور میں دھماکے ہو رہے ہیں. آپ کو ایک بڑے وسیع انداز میں کام کرنا پڑے گا اور ان کو نشان عبرت بنانا پڑے گا, وغیرہ یہ مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ کہاں کہاں ہے, پاکستان میں یہ کاروائیاں کرتے ہیں, چائنا میں یہ کرتے ہیں, رشیا میں یہ کرتے ہیں, عراق میں یہ کرتے ہیں, شام میں یہ کرتے ہیں, ایران میں یہ کرتے ہیں, حتیٰ یمن, پوری دنیا میں نارتھ افریقہ تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ پورا دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک ہے, اس سے نمٹنے کی. دوسری بات جو فضل الرحمان صاحب نے کی تھی, میں اس کی تائید کرتا ہوں, مولانا فضل الرحمان نے, کہ ان سے بڑے بڑے گروہ موجود ہیں, ان کو بھی توجہ دینی چاہیے, خالی یہ ایک گروہ نہیں ہے.
جی انہوں نے کہا, لیکن کہا جاتا ہے ٹی ٹی پی سب سے بڑی جماعت,
ان سے بڑی جماعت انہوں نے کہا ہے, میرے خیال میں ان سے بڑی القاعدہ ہے.
ٹھیک, علامہ طاہر رشیدی صاحب, آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب کو, پھر میں ذرا بات رانا صاحب سے. جی
علامہ صاحب بڑے محترم ہیں, لیکن میں
ان کی نظر میں یہ حال ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا یہ جو کیا جا رہا ہے.
بات یہ ہے, یہ تو یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ طالبان کبھی مانیں گے نہیں کہ وہ مذاکرات پہ آئیں گے. علامہ صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہاں لوگ کہتے تھے کہ وہ آئے نے پاکستان کے تابع ہو کے مذاکرات نہیں کریں گے. خدا کا واسطہ ہے, امن کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اور پھر آپ مجھے بتائیے, وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اس قوم نے الیکٹ کیا ہے, تحریک انصاف کو اس قوم نے الیکٹ کیا ہے, پیپلز پارٹی کو اس قوم نے الیکٹ کیا ہے, یہ منتخب ہو کر آئے ہیں, ان کمیٹیوں کا اعلان پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے. اگر یہ سب کچھ ہی غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی ہو رہا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, ان لوگوں نے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے.
اخلاقیات کے حوالے سے ثابت کرے اخلاقیات, یہ کس آئین کی شک کے تحت ہو رہا ہے,
یہ
کس دین اور شریعت ضابطے کے تحت ہو رہا ہے؟
یہ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح لبنان اللہ سے مذاکرات ہوتے ہیں.
کس سے؟
یہ جو الیکشن کا جو مینڈیٹ
حزب اللہ مانگی دہشت گرد جماعت ہے,
بڑے احترام کے ساتھ.
نہیں, حزب اللہ تو وہاں الیکشن لڑتی ہے. علامہ صاحب جی, یاسر پیر زادہ صاحب کی ذرا بات سن لیتے ہیں. جی
الیکشن کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے نا جی, وہ ذرا اور قسم کا ہوتا ہے. یہ ایک میں بیان آپ کو یاد دلاؤں گا, ایک دفعہ جب نیا نیا منتخب ہوا یہ جو انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ, تو انہوں نے ایک بیان دیا کشمیر کے حوالے سے کہ کانگریس کے پاس بھارت کی سرحدوں کو تبدیل کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے الیکشن اس نعرے پر نہیں لڑا تھا کہ وہ انڈین جو سرحدیں ہیں, بارڈر ہیں, ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی کسی کے یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹ گروپس کے آگے اپنی سرزمین سرنڈر کر دیں گے ایٹ اینی کاسٹ واٹس ایور. یہ ہمیں ذرا کلیئر ہونا چاہیے اس بات سے. ہاں یہ مینڈیٹ ضرور ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے مذاکرات کریں, بالکل کریں, اور جیسے بھی چاہیں اس کو ایک لیگل کور دے دیں, ایمنسٹی کا اعلان کر دیں, سب کچھ ہے, لیکن پاکستانی سرزمین کو سرنڈر کرنے کا کسی بھی صورت میں مینڈیٹ کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے رانا صاحب, طاہر شفیع صاحب ایک سیکنڈ, رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت جو مذاکرات کرنے جا رہی ہے, مذاکرات کے حوالے سے حکومت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا جزوی امن یا کلی امن آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جنگ بندی ہوئی ہوئی ہے نا, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر امن کی کیفیت ہے؟ کیا آپ اس کو مستقل کر لیں گے اپنی کوششوں سے؟
یقیناً ایک مستقل امن کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو دہشت گردی عمل ہے یہ ختم ہونا چاہیے, کسی اور ملک میں ایسے کوئی معاملات نہیں. یہاں دو تین جو باتیں ہوئیں کہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر پاکستان ایک جمہوریت ہے, اور اس جمہوریت کے اندر ایک بہت ہمیں ایک وسیعت بڑے دل کے ساتھ, جیسے آج یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, فقہوں کے درمیان میں اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ان کو ہم بات کرنے سے روک نہیں سکتے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کے تحت ایک میجورٹی کا ڈیسیشن ہے, جو پاکستان کے فیصلے جس طریقے سے ہوتے ہیں آپ اب اپنی رائے دینا. اب یہاں کہا گیا کہ جی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ جو تھی وہ جو نظریہ تھا وہ ضیاء الحق کے ساتھ کریش کر گیا تھا, وہ ختم ہو گیا, وہ آج اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کوئی بات نہیں ہو رہی. طالبان کے جو گروپ ہیں وہ بے شمار ہیں, اگر کچھ گروپس کے ساتھ اس وقت ہمارا کمفرٹ لیول نہیں ہوا اور ڈائیلاگ نہیں شروع ہوا تو وہ ہو جائے گا, لیکن جو بڑے گروپ ہیں اگر ہم ان کے پوائنٹ آف ویو,
اچھا رانا صاحب وہ ہو جائے گا ٹھیک, آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے آپ لوگ چاہتے کیا ہیں, مطلب کہ طالبان جو ہے وہ حکومت پاکستان پر کاروائیاں بند کر دے, یا پھر جو مائنڈ سیٹ ان کا ہے آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اس کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟
جب فریق آپس میں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ہم جاننا چاہیں گے کہ طالبان نے عام پاکستانی شہریوں کو قتل کر کے, ان کو مار کے, بم دھماکے کر کے انہوں نے کیا حاصل کیا, ان کا کیا ٹارگٹ ہے؟ اگر وہ پاکستان کے اندر ان کے کچھ مضموم ارادے ہیں تو وہ ہمارے آئین کے تحت پورے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, اب وہ جنگ چاہتے ہیں یا وہ بھی امن چاہتے ہیں, تو یہ ایک چیز اب بات آگے چلی ہے. میں سمجھتا ہوں
امن ہی چاہتے ہیں نا, آپ امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں نا, لیکن رانا صاحب مائنڈ سیٹ تو پھر بھی ہوگا نا, اگر وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے رہیں گے, اگر وہ آئین کو غیر شرعی سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے رہیں گے, اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کل پھر وہ اپنے مطالبات لے کر سامنے آ جائیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک مستقل پرابلم ہے, اگر آج وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے اور آج اتنی خون ریزی کے بعد یہ معاملہ کسی سولوشن کی طرف چلا جاتا ہے, ذرا یہ کلیئر
کر دیں کیسے حل ہوگا؟ آپ مذاکرات سے غیر شرعی کو شرعی کروا لیں گے, ان کی نظر میں جو حرام ہے اس کو حلال کروا لیں گے آپ مذاکرات سے؟
ایسی کوئی بات, اگر ایسے ہارڈ لائن باتیں ہوتی تو ہم ٹیبل پہ نہ بیٹھ سکتے. آج ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ڈیمانڈس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور جمہوریت کے اندر کنسیشنز دینا, معاملات کو حل کرنا ملک کے وسیع تر مفاد میں, یہاں تک کہ صدر پاکستان کے پاس ایک قاتل کو معاف کرنے کی بھی ہمارے آئین نے اس کو اجازت دی ہے, تو یہاں پہ خون بہا
دیا جاتا ہے مفاد میں, آپ کس حد تک کنسیشنز دے سکتے ہیں ان کو؟
دیکھیں اس کا فیصلہ کو میں اناؤنس کرنے کے لیے نہیں, یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں ابھی تو ہمارے پاس, وہ پبلک کے پاس, میں تو عوام کا
ریڈ لائنز تو ہوں گی نا, آپ حکومت کے نمائندے بھی ہیں نا, عوام نے بنایا الیکٹ کیا تو آپ حکومت میں ہیں اس وقت, تو کیا ریڈ لائنز کیا ہیں حکومت کی؟
یہ بیفور ٹائم ہے, یہ پری میچور ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں, ہمیں مذاکرات کے عمل کو آگے جانے دینا چاہیے. یہاں کہا گیا کہ جی ابھی تک دھماکے ہوئے اور یہ ہوا, دھماکوں میں بڑی واضح کمی آئی ہے, اگر دھماکے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کو ڈس اون کیا ہے, اور اگر کوئی دھماکے ہو رہے ہیں تو کوئی
ڈس اون کرنا کافی ہے
جن کی تلاش ہو رہی ہے.
یہ ذرا یہ جو بات ہے نا جی, ڈس اون کرنے والی اور کمی والی, آئی ایم سوری, یہ بہت میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہے.
دیکھیں آپ کا ڈسٹرسٹ لیول ہے, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ڈسٹرسٹ کریں.
ایک سیکنڈ
جی یاسر بھی زیادہ صاحب,
ایک انسانی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا جو تھریش ہولڈ لیول ہے جی, وہ اس قدر اوپر چلا گیا ہے, چلیں آپ کہہ لیں کہ جس روز دھماکے میں دو تین بندے مرتے ہیں یا ٹارگٹ کلنگ میں چار پانچ لوگ مرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امن رہا پورے ملک میں, اور جو روزمرہ کی ڈکیتیاں وہ تو خیر کسی کھاتے میں نہیں. یہ بدقسمتی سے وائلنس اتنا شدید ہوا ہے اس ملک میں پچھلے 10 سال سے, جو تھریش ہولڈ لیول ہے وہ اتنا چلا گیا اسٹیٹ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ
آئیڈیل پوزیشن میں اور پریکٹیکل پوزیشن میں فرق ہونا چاہیے.
ڈس اون کرنے والی بات جو ہے نا, ڈس اون کرنے والی بات,
کوئی ڈس اون نہیں کر رہا,
یہ افسوسناک بات ہے. یہ اگر ڈس اون,
کوئی ڈس اون نہیں کر رہا آئیڈیل پوزیشن میں اور پریکٹیکل پوزیشن میں.
یاسر پیرزادہ صاحب, آپ کو حکومت کا فوکس کس پہ لگ رہا ہے ابھی؟ یہ وقتی حل کی طرف جا رہے ہیں یا یہ مستقل حل کے لیے ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ, میں مسلمان تو کافر کی بحث سے نکل جائیں؟
وقتی حل کے لیے
یاسر پیرزادہ صاحب جی
جی, یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, کیونکہ جب بھی اس طرح کے گروہوں سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو اس میں دو طرح کے جو ہے نا گروہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو ہم نہلسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ایبسلوٹزم میں قائل ہوتے ہیں, وہ انہیں وائلنس ہی کرنا ہوتا ہے کمورٹ میں, ان کا ایجنڈا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کسی صورت مان نہیں سکتے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آرم اسٹرگل اس لیے شروع کی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پرسٹ موومنٹس میں ہوتے ہیں, یا ان کی جو پولیٹیکل رائٹس ہوتی ہیں وہ मानी नहीं जा रही होती विद इन द सिस्टम, इसलिए वो अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए आम स्ट्रगल करते हैं। हमने बदकिस्मती से जो पहली वाली मिसाल है ना उसका सामना है, और इसीलिए मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि वो उस मिसाल के होते हुए जो एब्सोल्यूट किस्म के जो लोग होते हैं बिल्कुल वायलेंस में बिलीव करते हैं, उनके साथ आप जब नेगोशिएट करेंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अल्टीमेटली पीस ले लेंगे। वक्ती तौर पे शायद आप हासिल कर सकें,
लेकिन
आपका सवाल है ना कि अल्टीमेटली अमन हासिल करना वो बहुत मुश्किल तकरीबन नामुमकिन होता है।
अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, किस हद तक यासिर पीरज़ादा साहब की बात से आप एग्री करेंगे? और साथ साथ देखें, कहा जा रहा है कि जो माइंड सेट को तब्दील करने वाला कदम है ना वो एक बहुत अहम कदम है, और ये भी कहा जाता है कि उसके लिए जरूरी है कि फिर जो मदारिस हैं उनके लिए काम करना होगा, लेकिन वफाकुल मदारिस कहता है कि अगर मदारिस जो है उनकी तरफ देखा, उन्हें छेड़ने की कोशिश की गई तो फिर ऐलान जंग होगा, तो फिर मसला कैसे हल होगा?
देखिए, पहली दृश्य ये है कि अभी हम बड़ी इब्तदा में हैं, अल्लाह करे ये मामलात अपनी तकमील को पहुंचे, ये अमन का अमल अपनी तकमील को
कामयाबी से अल्लाह करे।
हमारी एक ही ख्वाहिश है, वो है अमन
जी,
और उसके लिए बड़ी वाजे बात है, अभी जैसे कहा गया कि जमीन सरेंडर कर दी जाए या पाकिस्तान का एक एक इंच भी जो है वो हम सब के लिए अपने बच्चों अपनी जानों से ज्यादा कीमती है। कभी भी किसी गिरोह के सामने या कभी किसी ऐसी जमात के सामने जो गन की बुनियाद पे हमारी सरजमीन को छीनना चाहेगी, ये सरजमीन उसे नहीं दी जा सकती, ये जहन में रहना चाहिए। बात हो रही है आयने पाकिस्तान के तहत, कहा बात आयने पाकिस्तान के तहत हो रही है, बात ये आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आईने पाकिस्तान के तहत ही भर्ती हुए हैं, बात उनसे वो करने जा रहे हैं, तो भाई अभी देख लेना, जहां कुछ वक्त गुजरा है और देख लेते हैं। जब एक चीज जब एक चीज वाजे हो गई कि जो अमन की बात करेगा उससे अमन की बात की जाएगी, जो तशद्दुद की बात करेगा उससे उसी जुबान में बात की जाएगी, वजीर आजम इस बात को बार बार कह चुके हैं।
अल्लामा साहब, जब पीस निगोशिएटर हैं, जब वही ऐलान जंग की बात कर दें कि मदारिस को अगर छेड़ा जाएगा तो ऐलान जंग होगी, तो मैं इस पे आपसे सवाल
दूसरा देखे बात सुने, ये दूसरी बात है जो मदारिस की बात है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि मदारिस रबिया जो है वो ख्वाह देवबंदियों के हों, बरेलवियों के हों, अहले हदीसों के हों, शिया के हों, वो इस वक्त इस मुल्क के अंदर दीन की, मुल्क की, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर हुकूमत को कोई एतराज है, वैसे आज चौधरी निसार साहब ने क्लियर कर दिया है कि हम कोई मदारिस के खिलाफ पॉलिसी नहीं ला रहे, कोई हम क्रैकडाउन नहीं करने जा रहे, इसके बाद मैं
मतलब कौमी सलामती पॉलिसी पर अमल नहीं होगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने
दे, एक मिनट मुझे मुकम्मल कर लेने दे। कौमी सलामती पॉलिसी में कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि जिससे कोई मदारिस को खतरा हो, और इसकी
फंडिंग के हवाले से बात है, वाज़े लाहे अमल मौजूद है फंडिंग के हवाले से, निसाब की चेकिंग के हवाले से, और उनको जदी तकाजों पे हम अहंग करने के हवाले से, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में।
अब आप सुन लीजिए, मदारिस में जदीद तालीम भी दी जा रही है, मिडल है, मैट्रिक है, एफए है, फंडिंग मैं कहता हूँ, मैं
उनकी फंडिंग सबके सामने है,
कहता हूँ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर मदरसे का ऑडिट होता है, और बतौर सरबराह तारीख के तहफ्फुज़ मदारसे दीनिया मैं कहता हूँ, अगर कोई मदरसा ऐसा है जिसको बाहर से फंडिंग आ रही है और उसके शवाहिद
तो कौमी सलामती पॉलिसी मुस्तरद करने की जरूरत क्या थी? अल्लामा साहब, अल्लामा नासिर वाह साहब, जरा इस पर आप कमेंट करते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है।
मेरे ख्याल में हमें साफ और शफाफ रहना चाहिए, मदारिस के जो वफाक है खुद कहना चाहिए हुकूमत को, आए देखे हमारे मदरसों को, चेक करें, स्क्रीनिंग करें, अगर आपको कोई दहशत गर्द मिलता है पकड़ के इसको ले जाएं, हमें अपना ऑडिट कराना चाहिए, अपने अपने मालियात को शफाफ रखना चाहिए, और फिर ये चेक रखना चाहिए, अगर बाहर से किसी भी मदरसे को, किसी हुकूमत से कोई भी मुमलकत किसी मदरसे को फंड दे रही है तो उस मदरसे को बंद करना चाहिए, अगर किसी हुकूमत ने देनी है तो हमारी हुकूमत के जरिए मदरसे को फंड दे, डायरेक्ट फंड देना बंद करवाया जाए। इतने हजारों की तादाद में मदारिस जो हैं, इस तरह से चलना 20-30 लाख की बोर्डिंग और लॉजिंग ये सादा काम नहीं है।
फंड की बात करें, वो सऊदी जो मिनिस्टर है वो जाके वफाकुल मदारिस की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं, आप तो सिर्फ फंड की बात कर रहे हैं, चूंकि कहा जा रहा है ना उनका भी कोई इंटरेस्ट नजर आ रहा है।
मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर हर किस्म की मुदाखलत को हमें रोकना पड़ेगा, हमें हमारे अपने मुल्क को सावना बनाना पड़ेगा, अपनी खारजा पॉलिसी को अवाम की तर्जमान बनाना पड़ेगा, और इस तरह से दंदनाते फिरते लोग जो बाहर के
बालक
के सफीर भी हैं या वजीर भी हैं, उन्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए कि हमारे मुल्क में हमारी वजारत खारजा तो दाखिला की इजाजत के बगैर किसी मदरसे में जाएं या किसी जगह पर जाएं।
ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद जरा इस पॉइंट पे बात करते हैं। और राना साहब जरा ये भी बताइएगा, परवेज रशीद साहब ने कहा है कि तालिबान जो है वो एहरारुल हिंद को तलाश करें, तो क्या रियासत का काम भी आपने तालिबान के सुपुर्द कर दिया? जरा क्लियर कर दीजिएगा। ब्रेक के बाद ब्रेक के बात कर लीजिएगा, मैं ब्रेक ले लूं। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट, लेते हैं ब्रेक। अच्छा अलामा साहब, आप मदारिस के हवाले से बात करना चाह रहे थे, फिर राणा साहब से जरा हैरान की बात करेंगे।
जैसे कि वफाकुल मदारिस के इजलास में, ये मदारिस का इजलास था, एहतियाती इजलास था, सऊदी वजीर को वहां पहली बात खुद नहीं जाना चाहिए था, हमारी हुकूमत को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अगर बगैर इजाजत किया गया तो हमारी हुकूमत को पूछना चाहिए था, वजारत खारजा को पूछना चाहिए था तुम क्यों गए हो। फिर जो लोग जलसा कर रहे थे इत्तेजाजी जलसा, उनको बुलाना नहीं चाहिए था उसके अंदर उसको। मेरे ख्याल में ये बिदतें हैं, इनका रास्ता में रोकना पड़ेगा। एक 20 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क इतना कमजोर हो जाए कि जो जिसका दिल चाहे यहाँ आए करे और कोई इसको पूछने वाला ना हो।
$1.5 अरब भी तो मिल
मेरे 1.5 अरब डॉलर की कैसीयत है एक 20 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क पाकिस्तान, जिसको जान इस्लाम की क्यादत और राबरी करनी चाहिए थी। इन्हीं ताल्लुकात ने, इसी तरह की खारजा पॉलिसियों ने पाकिस्तान को इतना कमजोर मुल्क बना दिया है कि ये जो दुनिया के कमजोर और पपट मुल्क थे हम उनके पीछे लगे हुए हैं।
ठीक है,
क्योंकि हैसियत नहीं है अक्वामे आलम के अंदर।
राणा साहब क्या पता है इसी यहाँ तक ही एक्सेस के लिए उन्होंने $1.5 अरब दिए हूँ, क्या पता।
नहीं नहीं, देखें ये बात को एक बिल्कुल गैर जरूरी तूल दे रहे हैं। देखें बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वफाकुल मदारिस की हैसियत यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जैसी हैसियत,
ये फिरका वाराना बहुत बड़ा मसला है राणा साहब। ये ऐसे ही कोई फिरका
ये कह देना कि सारे वफाकुल मदारिस जो हैं वो फिरका वारियत फैला रहे हैं, जनरलाइजेशन है, हमें इस जनरलाइजेशन पे नहीं जाना चाहिए। वो एक यूनिवर्सिटी की एक 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 इदारे की हैसियत है। अगर यहाँ पे आप ब्रिटिश काउंसिल को उनके मर्जी के इदारों में जाने की इजाजत देते हैं, आप ईसाइयों के जो उनके मजहबी रहनुमा हैं उनको यहाँ चर्चेज को विजिट करने की इजाजत देते हैं, अगर एक किसी मखसूस फिके के लोग अपने मर्जी के मदरसे में चले गए तो उसका इशू बना देना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़े
असल में जो हालात है ना मुल्क
में, सिर्फ जाना नहीं है, कहा जाता है कि फंडिंग का भी मामला है ना,
पब्लिक के अलावा कोई खुफिया काम किया है पाकिस्तान की एजेंसीज को यकीनन देखना चाहिए था, लेकिन ये एक जमहूरियत
है,
हम इसके अंदर जो फिके का जिस फिके से ताल्लुक रखने वाला है वो अपने फिके की तालीम अगर हासिल करना चाहता है तो हमारी हुकूमत कोई उस पर पाबंदी ना लगाना चाहती है ना लगानी चाहिए।
ठीक, अच्छा
तो
एक बात
समझता हूँ कि ये नॉन इश्यूज हैं।
ठीक, तारा शफी साहब जरा एक चीज में,
और हैं हमारे इश्यूज नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज पाकिस्तान में
यासिर पीरजादा साहब
और अमन के इश्यूज हैं,
ये नॉन इशू है,
इकॉनमी सबसे बड़ा इशू है।
राणा साहब आप एक ही बात पूछ रही हूँ मैं, क्या ये नॉन इशू है?
फोर्स है वो पाकिस्तान की इकॉनमी की दुरुस्तगी है और मईशत के कमजोर हो जाने से पाकिस्तान के
नहीं इकॉनमी के लिए हम अपना मुल्क तबाह कर दें,
बैरूनी तौर पे हम कमजोर हो रहे हैं,
फिरका वाराना बुनियादों पे, ठीक,
हमारी हर तरह की सिक्योरिटी एट रिस्क है। तो हमारा जो असल एजेंडा है पाकिस्तान की मईशत की मजबूती है, गरीब के पेट में रोटी जाने की
थीक,
रोजगार की है, देखिए जो इतने ज्यादा तादाद में बच्चे मैदान में आ रहे हैं जॉब मार्केट में उनको एम्प्लॉय करने की हमारी, ये हमारे टारगेट्स हैं।
जी टारगेट्स बता दिए हैं और उन्होंने कहा ये नॉन इशू है। पीरजादा साहब आप क्या कहते हैं?
नहीं, एक तो भैया मदारिस के हवाले से सिर्फ मैं एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही काबिल एहतराम दो उलमाए कराम यहाँ बैठे हैं
जी,
कि कोई से 5 टॉप के मदरसे मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान के जो अपने अकाउंट्स वेबसाइट पे अपलोड करते हैं जो कि एक कानूनी रिक्वायरमेंट, कोई से 5 टॉप के मदरसे, ठीक है, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे 2-3 बातें भी मुझे जल्दी से सम अप करने दें कि यहाँ पे बात हुई कि जी वो मुजाकर अमन ही वाहिद हमारा एजेंडा है, मेरा ख्याल है सिर्फ अमन नहीं होना चाहिए कि एक और रिक्वायरमेंट भी इसकी होनी चाहिए और वो ये कि आइंदा इन मुजाकरात के नतीजे में कोई ऐसा मुसल्ला ग्रो उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलनी चाहिए कि वो ये सोच ले कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है इस मुल्क में कि जब आप वायलेंस को बुरुए कार लाते हैं तो ही स्टेट आपकी बात सुनती है, फिर ही वो आप टेबल पर बैठती है और फिर वो मुजाकरात करके उठती है। इसके अमन काफ़ी नहीं, अमन के साथ साथ ये भी देखना, जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट के लिए कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे नहीं होगा, ये मिसाल नहीं बनेगी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तीसरी बात इसमें यह है कि यहाँ ये बात भी कही गई कि जी हमें अमन के बाद हम जो है ना वो इस कामयाबी के लिए दुआगो हैं, ये बिल्कुल मैं भी उन दुआगो लोगों में शामिल हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि फर्ज कर लें एक मिनट के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक इन द सेंस कि वो लोग हथियार भी फेंक देते हैं और हम मुजाकरात में कामयाब भी हो जाते हैं, ये लोग करेंगे क्या, ये मतलब क्लर्क भर्ती होंगे दफ्तरों में, प्राइमरी स्कूल टीचर लगाटा में, खेती बाड़ी करेंगे, मतलब यहाँ रेडी लगाएंगे वहां पे, क्या करेंगे ये लोग? मुझे तो इस बात की समझ नहीं है।
जरा टाइम कम है यासिर पीर ज़ादा साहब, मैं कोशिश करते हैं जरा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब अगर इसका जवाब दे दें, और अल्लामा साहब जो अकीदतों और जो फिरकावारियत के हवाले से तालिबान का एजेंडा है, आपके ख्याल में इस बात की क्या गारंटी है कि मुज़ाकरात के नतीजे में फिर वो इस हवाले से भी कोई बात मान लेंगे?
सबसे पहले तो मैं अपने भाई यासिर पीर ज़ादा साहब को, आपको, अल्लामा साहब सबको दावत देता हूं कि 500 मदरसों में आपको ले जाने को तैयार हूं, जिनका ऑर्डर
ले जाने की बात नहीं, मैंने ऑर्डर ले जाने की बात नहीं की, मैंने कहा वेबसाइट पे अपलोडेड अकाउंट्स बताएं मुझे,
एक मिनट वेबसाइट पे अपलोड भी दिखा देंगे यासिर पीर,
बाकी हजारों जो है उनका क्या होगा?
मदरसा अपना ऑर्डर करवाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया, आप सुबह कहे मैं आपको ले जाता हूँ, जाके ऑर्डर करवा लीजिए,
ऑर्डर बताया मैं देख लूंगा, कानूनी रिक्वायरमेंट है कि वेबसाइट पे अपलोड हो।
वेबसाइट का एड्रेस बता दो।
नंबर दो जो आपने बात की है,
आपने घुमा दिया,
आरज करूँ कि देखिए 9/11 से पहले भी ये लोग अपना काम करते थे, 9/11 के 2000 से पहले भी ये लोग जीते थे, रहते थे, कोई उन्होंने असले नहीं उठाए हुए थे, अल्लाह खैर करे अगर ये मामला,
क्या मैं जवाब दूं इस बात का? ताहिर साहब अब आप इतनी मोहब्बत से मुझसे बात करते हैं, आपसे तो इख्तलाफ करने को दिल नहीं करता, चलें खैर अब इस बात का मैं क्या यहाँ पे,
आप देखे ना, आप ये अभी 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 शादी नहीं हुई, आप कहते हैं बच्चे का नाम क्या होगा, भाई बच्चे का नाम भी रख लेंगे, मामला तो आगे चलने दो, खुदा
चले ठीक है, टाइम
मामला आगे चलने दे। आखिरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी बात मैं आज ये कह रहा हूँ कि जो अच्छा गैर मुल्की इमदाद लेता है, खा वो किसी बख्तरा फिक्र का हो, गवर्नमेंट इदारे उसको सामने लाएं, हम उनके गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे, हम उन लोगों में, हम कहते हैं इस मुल्क के अंदर मदरसा रिफॉर्म्स के नाम पर,
ये आप कह रहे हैं, फाकुल बदारस नहीं मानता इस बात को, वो मुस्तरद कर देते हैं इस बात को, टाइम का है, अलामा साहब जवाब दे दें, और साथ साथ वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं, क्या किया जाए कि आप लोगों का भी मुजाकराती अमल पर एतमाद बहाल हो जाएगा, आप भी इसे सपोर्ट करेंगे, क्या करें?
मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कानून, आइन, दीन और शरीयत के मुताबिक अगर इकदाम उठाए जाएं, कातिल को कातिल समझा जाए, मुजरिम को मुजरिम समझा जाए, दहशतगर्द को दहशतगर्द समझा जाए, उसे स्टेक होल्डर ना बनाया जाए, और आइन, कानून, दीन और शरीयत जो कहते हैं उस पर अमल होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के अवाम की तर्जमान होनी चाहिए, पाकिस्तान को अपने हमसाय ममालक से अच्छे रिलेशन कायम करने चाहिए, पाकिस्तान को अमरीकी और सऊदी ब्लाक से निकलना चाहिए, क्योंकि ये ब्लाक अभी डूब रहा है, पाकिस्तान को उस खत्ते उस ब्लाक में आना चाहिए जो इस रीजन के साथ नेचुरल उसका लिंक है, पाकिस्तान को चाइना के साथ खड़ा होना चाहिए, रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस का ब्लाक है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अमेरिका के और सऊदीया के ब्लाक से निकलना चाहिए, सऊदीया दुनिया में इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर, लुबनान के अंदर, हत्ता मिस्र के अंदर, यमन के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सऊदी पॉलिसी के साथ नहीं होना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अपने अवाम की तर्जमानी करे, पाकिस्तान सऊदीया के पीछे ना लगे, पाकिस्तान एक जमहूरी हुकूमत है, सऊदीया किंगडम है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूएई की कोई वैल्यू नहीं है, कोई हुकूमतें हैं कतर, छोटे छोटे शहर है, हमारे मुल्क को बाकायदा एक सावरन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी जैसे भुट्टो साहब के जमाने में थी, पाकिस्तान की मुतहरिक खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, और पाकिस्तान के इंटरनल मामला के हवाले से नफरतों को मिटाने के लिए
बहुत शुक्रिया
इकदाम करने चाहिए।
अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, अलामा ताहिर अशरफी साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका यासिर पीरज़ादा साहब और राना मोहम्मद अफजल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि जुल्म का बदला सिर्फ एहतजाजी शऊर की बेदारी से ही मुमकिन है, और ये बात भी हकीकत है कि शऊर का ताल्लुक जिंदा इंसानों से होता है, मुर्दों से नहीं, तो क्या बहैसियत कौम हम शऊर की बेदारी की किस मंजिल पे हैं, जिंदों में या मुर्दों में, सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए, पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।